उसके आंसुओं का प्रवाह एकाएक रुक गया। मस्तिष्क के एक कोने में बरसों से सुरक्षित नाम पति के मुख से सुनकर स्मृतियों के बंद द्वार एकाएक खुलने लगे। वह चौंक उठी। अरे सतीश, सतीश तो उसका अपना लाल है, कोख से जन्मा रत्न। उसे देखे शांति को एक युग बीत चुका है। उसकी प्रतीक्षा करते करते उसकी आंखों में धुंधलापन छा चुका है। अब लगता है अंधी हो जाएगी, और तब यदि पुत्र आ भी गया तो क्या होगा, उसे देखेगी कैसे। वियोगिनी के आंसू बह निकले। सोचने लगा था उसका मन, कितनी शीघ्रता से ये दिन बीतते रहे। सप्ताह, माह, वर्ष, कई वर्ष बीत गए और मुझे कुछ आभास ही ना हुआ। मैं बूढ़ी हो गई, एकाएक विश्वास नहीं आता। एक स्वप्न प्रतीत होता है ये जीवन, धुंध फैलाता एक बादल। कितनी निष्क्रियता लादी है इसने मेरे जीवन में। मेरा अतीत कभी वर्तमान भी था, कभी वे दिन साकार भी थे। मैं एकाएक हां नहीं कह पाती। बचपन बीता, जवानी गई, सब कुछ शेष भी बीतता जा रहा है। क्षण निरंतर गतिशील है। सतीश से मिले 13 वर्ष, एक लंबा युग जैसे बीत गया। अब तो यूं लगता है हमारे जीवन में सतीश की उपस्थिति मात्र एक स्वप्न थी। केवल स्वप्न, जिसके साकार होने की अब आशा नहीं। मगर ये विरह तो बढ़े जा रही है। मन की व्याकुलता उत्तरोत्तर तीव्र होती जा रही है। तब एकाएक उसकी व्याकुल वाणी पुकार उठी, सतीश, सतीश। और कुछ न कह सकी वह। वाणी उसकी रुंध गई। बरसों से व्याकुल हृदय करुणाजनक चीत्कारे मारने लगा। साधुराम ने देखा शांति भी रोने लगी है। दोनों की रात्रि की निस्तब्धता को भंग करती सिसकियों ने वातावरण को भयानक बना दिया था। साधुराम को इस सूनेपन का आभास हुआ। इधर उधर देखा उसने, खामोश दीवारें उसे घूरती प्रतीत हुई। निराशा देखकर तनिक डर गया। झट से आंखें पोंछ ली उसने और स्वयं को ढाढ़स बंधाने के प्रयत्न में शांति से बोला, तुम क्यों रोती हो। शांति ने दृष्टि उठाकर देखा साधुराम को कुछ इस तरह से कि जैसे उसी ने ही सब कुछ छीना है। हां, वही तो अपने हट पर अड़ा रहता था और छोटी छोटी बात पर लड़ता था। उसी ने ही तो उसके पुत्र से दूर किया था एक कटु दीवार चुनकर। वह मिल नहीं सकी सतीश से तो केवल इसी साधुराम की वजह से। साधुराम वही तो है जिसने शांति के ममतामयी कोमल हृदय को अपने कठोर वचनों से सुप्त कर दिया था। लेकिन भीतर ही भीतर वह हरदम घुलती रहती। समय आया जब साधुराम का हट टूट गया। पुत्र उसे भी याद आने लगा। कभी कभी तो वह विलाप भी करने लगता था अपने दोनों बेटों को याद करके। शांति भला तब कैसे चुप रह सकती थी। रोते रोते थक जाने पर दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते, दुख भूलने के लिए दूर कहीं खोकर अपने बचपन, अपनी जवानी के दिन याद करते। ऐसे में कभी जब शांति कहती उससे जाकर सतीश को मिलाने को, तब साधुराम कहा करता, जरा सोचो यदि उसके हृदय में हमारे प्रति कुछ स्नेह शेष होता तो स्वयं न चला आता हमारे पास। हम आप जाएं, इससे हमारा मान घटेगा। शांति, मैं पिता हूं और अपने जीते जी इस शब्द को इतना तो नष्ट ना होने दूंगा। हां, आ जाए वह, गले ना लगा लूं तो कहना। इस पर जब शांति पूछा करती, फिर अक्सर एकांत में क्यों इतना याद कर उसे आंसू बहाते हो, क्यों पुकार उठते हो आप उसे? तब साधुराम कहता, शांति, आंसू मैं अपने भाग्य के प्रति बहाता। सतीश के प्रति हमारा स्नेह अभौतिक है, उसी को स्मरण किया करता हूं। यह सुनकर शांति कुछ ना कहती थी। समय आया जब उन्हें सतीश के भौतिक स्वरूप की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन तब पता लगा कि समय के पंखों के साथ उड़कर उनका पुत्र कहीं और जा बैठा है, दूर एक शहर में। लेकिन वहां ढूंढ पाना उसे यह साधुराम के बस की बात नहीं थी। तब दोनों को अपने मन की इस उत्कंठा को, अपने आंसुओं के भार से, अपने बीत चुके दिनों की याद से दबाना पड़ा। और कभी जब इन सब को चीर कर वही उत्कंठा फिर उभर आती है तो उनकी तड़पन का कोई किनारा नहीं होता। कभी रोते हैं, कभी करुण शब्दों से एक दूसरे के मन को और अधिक रुलाकर शांत करने की चेष्टा करते हैं। एकाएक शांति के बहते आंसू रुके, लेकिन करुण शब्द फूट पड़े उसके मुख से। कहते हो मैं क्यों रोती हूं? हां, क्यों रोती हूं मैं? मुझे तो हंसना चाहिए, मुझे खुशियां मनानी चाहिए। मेरा कोमल हृदय जो टूट चुका है, मैं मां हूं, जानते भी हो, फिर भी कहते हो मैं क्यों रोती हूं? इतने अज्ञानी तुम कैसे? मेरी ममता पीड़ित है, जानते भी हो, फिर भी कहते हो तुम्हें दुख क्या? मां कब क्यों रोती है, कब क्यों स्वयं को पीड़ित कहती है, नहीं जानते क्या? आठों पहर मेरे साथ रहते हो, लेकिन मेरे दिल के दर्द को नहीं समझते। पत्थर तो नहीं तुम जो सुन समझ नहीं सकते मां के ममतामयी कोमल हृदय के स्वर को? शायद मन को इन शब्दों ने कुछ ढाढ़स बंधाया, वाणी की उग्रता कुछ शांत हो गई। तब बड़े करुण स्वर में कहने लगी, असंख्य इच्छाओं के बल पर अपनी मंगल कामना करते हुए मैंने कल्पना लोक में बहकर कई महल बनाए, परंतु होनी को कौन टाल सका है? मुझे कोई ऐसा ना मिला जो मेरे मन की था ले सके। एक को आदमी के हाथ की बनाई मशीन ने रौंद डाला, और दूसरे को इस समाज ने इतना बदल दिया कि उसके लिए हम दो अजनबी बन गए। राजा के वियोग में इतने आंसू अभी तक इन आंखों ने नहीं बहाए, जितने की जीते जागते अपनी दुनिया में मस्त सतीश की याद में बह रहे। जिस तड़पन से बचने के लिए हमने भक्ति अपनाई थी, मन ठहर गया था कितनी जल्दी। भगवान की मूरत में राजा की हस्ती खेलती सूरत दिखाई पड़ती थी, आज वह सब बिसर गया है। राजा जैसे हमारे जीवन का कोई अंग नहीं रहा, बस केवल सतीश है और उसकी याद तड़पाए जा रही है। लगता नहीं कि कभी यह तड़पन खत्म होगी। मैं कितनी दुर्भाग्यशालिनी हूं, कोई नहीं कहता कि ले मैं तेरा लाल ले आया। तुम भी बस अपनी ही कहते हो, कभी नहीं कहा चल रोती क्यों है, मैं तेरे लाल से मिला लाऊं। और ना उस निष्ठुर ने कभी सोचा मां रोती होगी, चलू चलकर उससे मिलाऊं। काश इस धरती में समा जाऊं कि उस जैसी विशाल बनकर कहीं भी बैठे अपने लाल को हरदम निहार सकूं, जहां भी वह जाए मुझसे दूर ना हो सके। काश मुझे मां कहने आ जाता कोई अभी, लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहां। आंसू उसके फिर बह निकले, आंगन का सूनापन उसे डराने लगा था। उससे दृष्टि चुराकर उसने सामने साधुराम की ओर देखा, वह चुपचाप बैठा निरीह भावों से उसे निहार रहा था। उसके शब्दों से शायद आज ही समझा था कि शांति उससे ज्यादा तड़पती है सतीश को याद करके। शांति प्रतिदिन अपने बीते दिनों को याद किया करती थी, वर्तमान उसके लिए पूर्णतः सूना था। पुत्र की याद में वह जब भी अश्रु बहाती अंतर मन की गहराइयों से जैसे सांत्वना भरे स्वर में उसे कोई कहता प्रतीत होता, शांति मत उदास हो, मत रो, तेरा लाल एक दिन तुझसे आ मिलेगा, वह माँ को याद करेगा, एक दिन उसे अवश्य ही माँ की ममता की पुकार सुनाई पड़ेगी, स्मरण कर वह पश्चाताप के आंसू बहाएगा, भागा भागा तेरे पास आएगा, तेरे अंक में सिर छिपाकर फूट फूट कर रोएगा। अंबर में कब तक पंछी विचरता रह सकता है, पंख थक जाते हैं तो विश्राम करने अपने नील को लौटता है, सतीश आएगा, शांति उसका नील तेरा अंक ही तो है, मत्रो मत्रो शांति। और मन में उठते आशा भरे इस स्वर को सुनकर शांति चुप हो जाती है। मगर कब तक यूं चलता रहता, कब तक वह पुत्र वियोग में भीतर ही भीतर घुलती रहती।